नमस्कार आदाब श्रोताओं, मोबाइल वाणी के बेहद लोकप्रिय और खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं वैसे मुद्दों के बारे में जिससे आपकी जिंदगी का सीधा सरोकार है, वैसी खबरें जो जिंदगी की आपाधापी में हमसे छूट जाती हैं या खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाती। तो आइए सुनते हैं खबरें जरा हटके।
दोस्तों, मैं दीपक आपको जानकारी देने जा रहा हूँ महाराष्ट्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में मसाले चौधरी गांव की 37 वर्षीय साधना जोगट अपनी प्लेट पर भोजन करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। साधना जो अपनी छोटी सी स्त्री की दुकान से 2000 रुपए प्रतिमाह कमाती हैं, वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 35 किलो अनाज प्राप्त करती थी, लेकिन अब उसका नाम अंत्योदय अन्न योजना से प्राथमिकता हाउस धारकों की सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि वह सब्सिडी में केवल 5 किलो अनाज की ही हकदार हैं। राज्य के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रिंसिपल सचिव महेश पाठक ने कहा कि वर्तमान में महाराष्ट्र में 25 लाख परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत पंजीकृत किया गया है, जिनमें आदिवासी और भूमिहीन मजदूर शामिल हैं। नए नियम के साथ 6 लाख परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना से प्राथमिकता हाउस धारण सूची में स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं 3 सदस्यों वाले 1 लाख सदस्य और 2 सदस्यों वाले 3 लाख परिवारों को प्राथमिकता हाउस धारण सूची में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि किसी व्यक्ति को एक महीने में 5 किलो से अधिक खाद्यान्नों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः 1 या 2 सदस्य वाले परिवारों को हर महीने 35 किलो अनाज का उपयोग करने की संभावना नहीं है, जिससे वो उस अनाज की कालाबाजारी करेंगे। विदर्भ क्षेत्र के किसानों के अधिकार कार्यकर्ता किशोर तिवारी ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 को बनाए रखने के लिए भोजन का अधिकार आवश्यक है, जो मानव गरिमा के साथ जीवन की मौलिकता आधार की गारंटी देता है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में भी प्रावधान है। एक व्यक्ति के लिए 5 किलो अनाज एक महीने के लिए पर्याप्त नहीं है। पूरे राज्य में आदिवासी और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या गंभीर है। यह नया नियम इन लोगों की मौत का नेतृत्व करेगा। हम चाहते हैं कि सरकार अपना निर्णय वापस ले लें या इन परिवारों को अन्नपूर्णा योजना में बदल दे, जिसके तहत 20 किलोग्राम भोजन प्रति माह सब्सिडी वाले दर पर दिया जाता है।
नमस्कार साथियों, मैं खबर लेकर आई हूँ ग्रामीण उद्योग से संबंधित। भारत के अधिकांश ग्रामीण व्यक्तियों और परिवारों को आय या कमाई के लिए बहुत तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण परिवार जो भी उद्योग शुरू करता है वो उनके जीवन शैली का हिस्सा होता है, इसलिए उद्योग के लिए जो कुछ भी करते हैं वे अपनी जीवन शैली के अनुसार विशेष तरीके से करते हैं। परंतु एक सफल और लाभ को प्राथमिकता देते हुए पूंजीवादी उद्योगपति को अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए, आगे बढ़कर विकास के लिए प्रयास करना और काम करना चाहिए और उस उद्योग की जरूरतों के लिए अपनी जीवन शैली को ढालने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय की दुनिया में शहरी लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या है जो विकास और लाभ के लिए अपने उद्योगों को जीवन के रूप में लेते हैं। ग्रामीण उद्योग को कुछ बातें प्रभावित करती हैं, जैसे उनके रहन सहन का तरीका, सोचने का तरीका तथा दैनिक क्रियाकलाप इत्यादि। अनेक चुनौतियों के बावजूद ग्रामीण अपनी मेहनत और लगन से उद्योग जगत में अपनी पहचान बना रहे हैं। एक बार ग्रामीण व्यक्तियों ने आर्थिक गतिविधियों के अनुरूप अपने जीवन के स्वरूप में समायोजन कर लेंगे, तब वे जोखिम को उठाने और अपने दम पर बढ़ने के लिए और अधिक तैयार हो सकते हैं। आशा है समय के साथ ग्रामीण उद्योग अपने लक्ष्य को पाने में सफल होगा।
दोस्तों, मैं हूं किशन और मैं आज आपको बताऊंगा नई दिल्ली में बढ़ती वायु प्रदूषण के बारे में। दोस्तों, नई दिल्ली में सड़कों पर लगातार बढ़ रही निजी वाहनों की संख्या और बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की बात की जाती है। हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए भी ऐसी बातें फिर से कही गई है, लेकिन अगर आप पूरे देश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बता दें, देश की कई स्टेट ट्रांसपोर्ट करोड़ों के घाटे में चल रही है, 47 में से केवल 7 ही फायदे में दिख रहे हैं। जिस दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की बात की जा रही है, एक रिपोर्ट के अनुसार घाटे वाली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में दिल्ली पहले नंबर पर है। ये खुलासा एक सरकारी रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें देश की 47 स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के नफे नुकसान की जानकारी दी गई है। इसके अनुसार 2015-16 में सभी रोडवेज को 11,350 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो कि 2014-15 के मुकाबले 7.2% ज्यादा है। IIT दिल्ली के सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर गीतम तिवारी का कहना है कि राज्य सरकारों के पास यदि फंड की कमी है तो केंद्र सरकार को इन्हें इंसेंटिव के जरिए पैसे देकर उनकी मदद करनी चाहिए। रोड मिनिस्ट्री के डाटा के अनुसार एक कार मुकाबले में एक बस 1.6 गुना ज्यादा पॉल्यूशन करती है। यह आंकड़ा दो पहिया और तीन पहिया वाहनों में चौंकाने वाला है। दो पहिया वाहन 2.5 गुना और तीन पहिया वाहन 4.7 गुना पॉल्यूशन फैलाते हैं। ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स SRTC के इन हालात के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार सब कुछ जानते हुए भी आंख मूंद कर बैठी हुई है।
तो दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की कुछ खास खबरें। अगर आपके आसपास या आपके क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो जरा हटके हैं, तो हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल में नंबर 3 दबाकर और साथ ही इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए अभी दबाएं नंबर 5। तो सुनना न भूलें हर बुधवार और शनिवार शाम 4 बजे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरें जरा हटके।